पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
तीसरा स्कंध है। अब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा की अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम इसे उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। याद रखना दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये गीता जी में 14वें अध्याय में 3-4-5 श्लोक में आपका काम आओगे, जहां ये काल कहता है मैं तो सबका पिता हूं, प्रकृति सबकी माता है या दुर्गा, इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूं जिससे इनकी जन्म होता है। अब शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत देवी पुराण ने, शक्ति पुराण ने स्पष्ट कर दिया, थोड़े से उल्लेख में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजर अमर नहीं है, दुर्गा इनकी माता है, तीसरा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है, और चौथा ये है कि ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही ये आपका कर सकते हैं। अपुण आत्माओं ये व्यक्ति कहते हैं, अनजान ये संत कहते हैं, रामपाल आलोचना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है, नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार रूपी वृक्ष के अभेद अंग हैं और उन्हीं से हमें लाभ होना है। अब ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पेड़ की टहनियों को काटने को कहे छोड़ दो इसको, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र और संसार। ये दास क्या कहना चाहता है कि तुम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, शास्त्र विधि को त्याग कर आप मनमाना आचरण कर रहे हो। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो साधना करनी चाहिए, जो त्याग देनी चाहिए, ना करनी चाहिए, अकर्तव्य है, उसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाणित मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। तो पुणात्मा दास ये कहता है परमात्मा क्या कहते थे, हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप जी कोई पौधा लाओगे आम का नर्सरी से, तो उसको कैसे बीजोगे, उसके बीजने का प्रॉपर वे देखिएगा, उसके बीजने का यानी विधिवत तरीका ये है, पौधा लाए और गड्ढा बनाया, जमीन में गड्ढा खोदा, उसमें खाद डाला, जड़ की तरफ से मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में गाड़ा और इसकी पूजा शुरू की, सिंचाई की, जड़ की सिंचाई की, यानी जड़ की पूजा की, मूल मालिक की पूजा की, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, मूल जड़े परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी हैं। यह शास्त्र अनुकूल साधना है अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। तो इब इस मूल की पूजा करने से, पूर्ण परमात्मा की साधना करने से अर्थात इस पौधे की जड़ की सिंचाई करने से, मूल की सिंचाई करने से आहार पहुंचा तना इन सभी में और फिर ये बड़ी हो जाती हैं टहनियां। ये टहनियां बड़ी होकर के शाखाएं बड़ी हो जाती हैं गण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी और फिर इनके फल लगेंगे और इतने फल लगेंगे ये बिना मांगे आपको फल देंगे। तोड़ना नहीं, दास ये नहीं कहता कि इनको काट को फेंक दो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दो, नहीं, दास ये कहता है परमात्मा ने जो बताया है कि आप जी ऐसे कर रहे हो, आपने टहनियों की तरफ से पौधे को गाड़ रखा जमीन में और इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं की पूजा शुरू कर रखी है और परमात्मा क्या कहते हैं, एक साधे सब सधे सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो फल फूल गाए। परमात्मा बंदी छोड़ कहा करते कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुमने शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं शुरू कर दी क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश हमें लाभ देते हैं, हमने ये सोच करके इन्हीं की पूजा, इन्हीं को जमीन में गाड़ लिया और मूल मालिक की पूजा छोड़ दी, हमारी भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो गया, हम निर्धन हो गए, भक्तिहीन हो गए। अब क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं एक के साधे सब सुध, इस एक के साधने से, एक की पूजा कर, मूल मालिक की पूजा करने से सब सुध जाएंगे और तुम सभी देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे तक आगे भैरव भूता तय सब साधे सब जावे। और जे तू सींचे मूल को हो ये फल फूल गाए। अपुनात्मा ये है वो तत्व ज्ञान जो हमें बहुत पहले प्राप्त होना चाहिए था, फिर भी परमात्मा कहते हैं पीछे गई सो जाने दे, अब आगे दे संभाल, अब भविष्य में ठीक कर लो इनको। अब यहां प्रसंग चल रहा था कि सुखदेव ने 84 भुगति बुण पुजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पंडा पंथ पकड़ो, जिव्या तो सोए भली जोर टे हरिनामे, और नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख मवलो ना चावे। अब परमात्मा क्या बताते थे कबीर परमेश्वर जी कि तुम साधना नहीं करते वो बहुत गलत बात है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो रहा है, आपको इस मनुष्य शरीर की कीमत का वैल्यू का पता नहीं। और फिर साथ में ये बताते हैं कि तुम साधना कर भी रहे हो और शास्त्र विधि त्याग का मनमानी कर रहे हो, वो दोनों ही व्यर्थ है, और यदि तुम ब्रह्म तक और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी पूजा कर रहे हैं वो भी अति अनुतम। सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी अति अनुतम अनुतमाम कति घटिया है। अब ओम नाम का जाप यानी ब्रह्म साधना की थी ऋषभ देव जी ने, उसके पौत्र मारीची जी ने, उनकी किक्की द्रुप्ति हुई, इसलिए गीता ज्ञानदाता सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी साधना को भी अति घटिया बता रहा है, अश्रेष्ठ। इसलिए उसने तुरंत कहा है 15वें अध्याय के 1-4 के उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो संत बताओगा इसके सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, वो तत्वदर्शी संत होगा, उसकी पहचान है ये। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब परमेश्वर ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को आदरणीय गरीबदास साहेब जी के अंतःकरण में फीड किया, जैसा कल आपको प्रकरण बताया था। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा को पाया, सचखंड को देखा, उनके सतलोक को देखा जहां परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश शरीर है उसका। उन्होंने बताया कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। और फिर उन्होंने क्या बताया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इस मन को आत्मा को प्रेरित कर रहे हैं परमात्मा कि तू सुख सागर में वहां चल, सतलोक में, जहां दुख नाम की वस्तु नहीं। उसकी परिभाषा बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे कर, नहीं जा कोई दास गरीब अचल दासी सुख का सागर सोई। उस सतलोक की महिमा बताते हैं कि जैसे आप कभी एकांत में बैठे हो, कभी कभी होती है ऐसी स्थिति, अंदर से एक ऐसी हिलोर उठती है, उसमें कोई भी हमें दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आता, आत्मा में सबके प्रति रहम, एक मेहर की लहर उठती है। उसके जाने के बाद फिर कोशिश करने पर भी वह स्थिति हमारी नहीं बन पाती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर थी थोड़ी सी, उसके बाद ये कहर की लहर है, ये हो गया वो हो गया, उसका क्या होगा। हे भगवान वर्गे, कहते यहां तो कहर की लहर है तुम्हारे ऊपर, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी कैंसर से पीड़ित, कोई गधा कुत्ता बनकर दुखी हो रहा है। कहते शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कैर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। उसके बारे में बताते हैं कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। अब आपने इतिहास देख लिया जैन धर्म का, ये सही सच्चाई है, इन्होंने सत्य लिखा है, और ऐसा ही विधान है इस काल तक का, जब तक हम परम पिता परमात्मा की सत साधना पूर्ण संत से नहीं लेते। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, वृक्ष को कदर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापिस आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, और वहां तक गए हुए तो पता नहीं कितनी बार तुम जन्म मृत्यु को प्राप्त हो लिए। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध मर मुठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दो जक भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तृपत नाही, ये मन भोगी खसिया। जैसे आपने देखा महावीर जैन जी का, स्वर्ग भी गए है? और उसमें देवता भी बने, और फिर गधे कुत्ते सुअर भी बने, और नरक भी गए। दोजक नरक बहिष्ट स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से भी तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी जो ना गलत वृत्ति है, इतनी गंदी वृत्ति है, इसका कोई संतुष्टि नहीं है। एक व्यक्ति के पास मान लीजिए एक प्लाट है, तो उसकी चेष्टा होती है मकान बना लूं, हे भगवान एक कमरा रसोई बन जा, बाथरूम लैट्रिन बन जा, वो बन जाती है तो फिर सोचता है एक प्लाट और ले लूं, एक बेटा और है उसकी व्यवस्था करता है, वो भी हो जाती है, फिर सोचता है भगवान ये भी मकान बन जावे, और फिर उसके लिए संग्रह शुरू हो जाता है, भगवान की भक्ति करता नहीं, इतने मृत्यु हो जाती है और फिर पशु योनि को प्राप्त हो जाता है। ये है, कहते हैं जैसे कोई सरपंच बन गया, उसकी चेष्टा होती चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन गया तो इन्होंने सोचा कि एमएलए बनूं, एमएलए बन जाता तो ये सोचा मैं मंत्री बनूं, मंत्री बन जाता सोचा मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बन जाता इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री बनूं, जब बात बने इतने तब तक उसकी मृत्यु हो जा, फिर गधा मंत्री बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं जो करना काम था वो तो कराया कोई नहीं, बकवादा में सारा जीवन खो दिया। कहते हैं दोजक भी सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। ये तुम्हें यहां फंसाए रखता इस आशाओं में, ये बन जाऊं वो बन जाऊं। फिर कहते हैं सतगुर मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पुजे समान चलहंसा उस लोक बठाऊं जो आदि अमर अस्थान। परमात्मा कहते हैं चल उस सतलोक में ले चलो। गरीबदास साहिब जी कहते हैं चलो उस लोक में सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, परम संत मिले तो यहां की सब साधनाएं से जो तुम लाभ प्राप्त करे उससे हटावे तुम्हारा मन, और सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। पद यहां पद मिल पदे समाना, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, सत साधना प्राप्त करवा के उस परम पद को प्राप्त करवावेगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वत स्थान है। गीता ज्ञानदाता ने ये कहा कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ, मेरे पास नहीं है वो खजाना, और यहां तत्वदर्शी संत बता रहे हैं चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। क्या सुख है चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहां की केवल मुक्ति, केवल ज्ञान ऋषभ देव को प्राप्त हुआ, वो कैसे उसकी दुर्गति हो रही है अभी तक उसकी क्या हालत है आपने सदग्रंथों में देख लिया। और ये चार मुक्ति है इस तरह की, कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी आत्माओं के जनक, हमारे परम पिता वो परम अक्षर ब्रह्म, हम सभी के हितैषी हैं, उन्हीं की कृपा से आप जी सत्संग सुन रहे हैं। गुणात्मा इस विश्व में सत्संग नहीं है, जैसे नकली दुकानें खोल दी जाती हैं ओरिजिनल नाम रख कर, जितने भी आप जी सत्संग सुनते हो देखते हो जिनके विषय में आप जानते हो, वहां सत्संग नहीं है। पुण्यात्माओं एक बार आप जी को ऐसा लगता है जो पर प्रथम बार कोई प्राणी इस दास के ये कटु वचन सुनता है, सत्य वचन। कटु तो इसलिए लगते हैं कि ये सच्चाई है, और आम व्यक्ति भी इस बात को कहा करता है भाई सच्चाई कड़वी होती है। जैसे जब गोरखनाथ जी को परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी मिले थे, उनकी वार्ता हुई थी, तब परमेश्वर ने कहा था कि गोरखनाथ मैं सबन का गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं, जगत गुरु हूं, मैं सबको ज्ञान देता हूं। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम्हारा वचन मोय लग गए कड़ुआ, कि ये बात आपकी मुझे कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, आप कहते हो मैं सबका गुरु हूं। परमेश्वर ने कहा कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतिज्जत हुई। फिर गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सिद्धि को समाप्त कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये खिलौने वाला खेल नहीं चलता। तब गोरखनाथ जी ने चरण पकड़ लिए थे उस परम पिता परमेश्वर की और सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। तो पुण्यात्माओं ये दास तो प्रथम बार ये सुनता है, कोई ये कहता है कि किसी के पास सत्संग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अज्ञानी है, इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सतयुग से लेकर आज तक, ये सभी वेद ज्ञानहीन थे, अज्ञानी थे। अब ये बातें मानव समाज के गले उतारना ये आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत आसान हो गया है। आसान किसने बना दिया? परमेश्वर कबीर देव जी के उन वचनों ने बना दिया। इस काल से कहा था, काल ने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि चार युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम गवन संसार ही कीजे, परमात्मा ने तथास्तु कह दिया था। फिर जब तथास्तु कह दिया परमेश्वर ने, तब काल ने कहा था कि आप कलयुग में कितने जीव ले जाना, ये छूट दे दी। फिर काल ने कहा था कि कलयुग में मेरे दूत जावेंगे संत बनकर और पूरे विश्व को भ्रमित कर देंगे, सचखंड और सतलोक का ज्ञान बता के नकली नकली ज्ञान देंगे, झूठे ज्ञान झूठा ही नाम, और सभी को अपने साथ लगा लेंगे और बाद में आपका अंश जाएगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि बाद में आपका दास जाएगा तब कोई भी आपके दास की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने सभी को कोई तीर्थ पे कोई मूर्त पे कोई मंदिर में कोई मस्जिद में कोई गुरुद्वारे में या इन नकली संतों के साथ फिट कर दूंगा। तब परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग में मैं अपने हंसों को अपने हिसाब से निकाल लूंगा, तू अपना काम कर मैं अपना करूंगा। तो इस कलयुग में परमेश्वर ने यह बिचली पीढ़ी के लिए खेल खेला था। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर दूसरी बार कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, एक धर्मदास नाम की अच्छी आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे। कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, तत्व ज्ञान मूल ज्ञान तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नी तरही, और इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सब पंथ ना मिट जाए। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने आदेश दे दिया था अपनी प्यारी आत्माओं को कि इस तत्व ज्ञान को और इस सार शब्द को अभी सार्वजनिक नहीं करना। आप किसी भी संत पंथ से जो नकली संत है पंथ हैं और सतलोक सचखंड के ठेका ले रखा है इन्होंने, ये राधा स्वामी पंथ इसी की ब्रांच है, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सरसा जगमाल वाली दिल्ली में कृपाल सिंह आश्रम वाले ठाकुर सिंह वाले, ये ताराचंद दिनोद भिवानी वाले, ये सारे एक ककुआ का पानी है, सारे नकली नाम इनका झूठा ज्ञान। तो ये सभी बात तो बनाते हैं सतलोक के ज्ञान को, ना कख भी इनको कैख भी याद नहीं, अध्यात्मिक ज्ञान का इनको कैख भी याद नहीं। तो परमेश्वर ने कहा था कि इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना। अब किसी से पूछ ले कि परमात्मा कैसा है, कहेंगे परमात्मा तो निराकार है, सचखंड में परमात्मा की क्या स्थिति है, वह तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा परमात्मा में सचखंड में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में, और परमात्मा सचखंड में सतलोक में निराकार है। अब ये कोई ज्ञान हुआ इनका? अब कोई कहे कि तुम समुद्र में डूब कर मर जाओ, चलो तुम्हें डुबोता हूं, करो चार कितने कहोगे, कोई बात हुई है? वहां भगवान है नहीं, परमात्मा निराकार है, हम भटक रहे भगवान के लिए, परमात्मा मिले उसके दर्शन करे, अपना दुख रोवा सीने से लगावे हमारे को, हमारे दुखों का हरण करे, और परमात्मा है ही नहीं तो हम केटिंडे लाएंगे उस सतलोक में। तो पुण्यात्माओं हमें मूर्ख बना रखा था नकली संतों ने, ये काल के दूत हैं। अब प्रसंग चला है कि कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं, इवन ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी, बताओ अब यही परिचित नहीं है तो फिर बाकियों का तो बुद्धिमान को कहते संकेत ही बहुत होता है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करके फिर आज का सत्संग कि परमात्मा कैसा है, वो कहाँ प्रमाण है, वो दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी और श्री व्यास जी, जो इन 18 पुराणों का, चारों पवित्र वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का, पवित्र सुधा सागर का राइटर है, और श्री नारद जी जो एक महान संत ऋषि माने जाते, उन सबके विचार दिखाते हैं उनको कितना आध्यात्मिक ज्ञान है। ये देखिए श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28-29 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। ये पहला स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ, ये है नारद जी और व्यास जी का संवाद। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दीप कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु विष्णु जी को ये जगत गुरु कह रहे हैं, एवं देवताओं के भी देवता हैं, यानी सब भगवानों के भगवान हैं। ये विचार दे रहे नारद जी और व्यास जी सुन रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी आप विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है दुर्गा। वे कहते हैं कि शंकर की सृष्टि, संसार की सृष्टि रचने करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ, तुम में ब्रह्मा रजगुण है ये भी सिद्ध हो रहा है, और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, विष्णु जी कह रहे हैं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता, कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों यानी राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां क्या स्पष्ट करते हैं, यहां कलम तोड़ दी अपने दातुम ज्ञान की विष्णु जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है दुर्गा के, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं दुर्गा का। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में यानी मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है उस जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर कोई देवता नहीं, दूसरा कोई भगवान नहीं। अपुण आत्मा ये अंत आ गया श्री विष्णु जी के स्पिरिचुअल नॉलेज का, आध्यात्मिक ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से बढ़कर, दुर्गा से अतिरिक्त मैं किसी भगवान से परिचित नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, और मैं इन्हीं की पूजा करता हूं। और फिर क्या बताते हैं कि मैं कभी तो घोर तप करता हूं, फिर राक्षसों को मारता हूं जो जनता को दुखी करते। अब काल ने इनकी किसी दुर्गति कर रखी है, अपने पुत्रों की भी, विष्णु जी की। पहले तो बैटरी चार्ज करते हैं, तप करते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, फिर राक्षसों के साथ इनको बिड़ाता है, लड़ाता है, राक्षसों को मारते हैं, और फिर इनके बैड अकाउंट में वो सारे पाप लिख दिए जाते हैं और इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों के तीनों अन्य योनियों में चले जाते हैं। अब हम दिखाते हैं कि ये तो ज्ञान था श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी का, कि विष्णु जी को सर्वेश्वर कह रहे हैं, सब देवताओं के और भगवानों के भगवान बता रहे हैं, जगत गुरु बता रहे हैं। अब वो जगत गुरु विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता किसी भगवान को नहीं जानता। अब दुर्गा क्या बताती है अपना आध्यात्मिक ज्ञान, अब इसी पुस्तक के 562 पृष्ठ पर है, ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, वह महान पद अर्थात परंपरा पे है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है और जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों के निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, और वही यह अक्षर ब्रह्म है। इसका आध्यात्मिक ज्ञान नॉलेज देखो, ब्रह्म को ये अक्षर ब्रह्म कह रही है। आगे फिर क्या बोलती है, वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है और वह सबके मन है, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा है। अब यहां तो अक्षर ब्रह्म, फिर केवल ब्रह्म पाएगी। अब ओम नाम है, जीव आत्मा जाप करे, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य है, ये ओम जाप है। यहां देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा कहती है मेरी पूजा भी नहीं करना, किसी की पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करनी है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य करो, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। वो कहां रहता है, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वह ब्रह्मलोक में रहता है। अपना आत्मा दुर्गा ने अपना फाइनल कर दिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति को नहीं, और विष्णु जी ने फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये काल है, ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है भूत की तरह। ये कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम जो शरीर छोड़कर जाते हुए उसका उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली जो उच्चतम गति है श्रेष्ठ परम गति है उसको प्राप्त होता है। अब ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, पहले भी जन्म हुए आगे भी होंगे। इसे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है, इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमेश्वर है सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है और नीचे को तना अक्षर पुरुष है डार फिर सर पुरुष है और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तीनों देवा शाखा और पात्र रूप संसार। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत बता देगा इसके सारे पार्ट्स ऑफ द ट्री वृक्ष के सभी भागों को बता देगा कि तना कौन प्रभु है इसकी डार कौन प्रभु है फॉर एग्जाम्पल और शाखा कौन है पत्ते कौन है जड़ कौन प्रभु है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत से पूछो उस परमात्म तत्व के बारे में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के उस अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और ज्ञान दिया हुआ है। चौथे जाए के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है वो सचिदानंद घन ब्रह्म की ब्रह्म ने मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। चौथे जाए के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। तो इसमें स्पष्ट क्या कि उसके पश्चात 15वें अध्याय के 1-4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस इस उलझे हुए ज्ञान को असंख्य शस्त्र यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा छितवा माने काट कर इसको समझ कर फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर फिर संसार में नहीं आते अर्थात उनकी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की पूजा करो। उसकी पूजा का विधान बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में संकेत किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा का उसके पाने का ओम तत्सत इस केवल इस तीन मंत्र के जाप का निर्देश है। इसकी साधना भी तीन प्रकार से ही होती है नथिंग एल्स निर्देश माने फाइनल फैसला अग्रम मग्रम नहीं। अब ओम तो सीधा ब्रह्म का सर्वपुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु हैं, पुरुष हैं, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनसे नारा 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है, जो संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ रूप है, समझो मूल है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो बुढ़ापे और मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे धातु ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित हैं। तब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। सर्वपुरुष सर्वब्रह्म कहो चाहे सर्वपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा की उदाहरत है, और ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी है, परमेश्वर है और सबका धारण पोषण करने वाला है, वो श्रेष्ठ प्रभु है। अब ये क्लियर हो गया कि ना ब्रह्मा जी को गया, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, क्योंकि शिव जी को तो अंडरस्टूड है, उन्होंने ज्ञान ही ब्रह्मा जी से विष्णु जी से प्राप्त हुआ। अब अन्ना दुर्गा को, अब ब्रह्म को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है, वो भी ऑप्शन छोड़ रहा है कि मुझे उस परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप का ज्ञान नहीं, तत्वदर्शी संतों से पूछो। परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोए नहीं सत्संगी। तीन लोक और भवन चतुर्दश में कोई भी सत्संगी नहीं है, सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। अब आपको दिखाते हैं सतयुग के ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, अपने सदग्रंथ ही बताते हैं, दास नहीं बता रहा, क्योंकि जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं आज उन्हीं सदग्रंथों को हम स्वयं पढ़ रहे हैं, और ये अज्ञानी हमारे गुरु थे नकली, ये इन सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को नहीं समझ सके, इन्होंने हमारे को लोक वेद सुना रखे, दंत कथा। सदग्रंथों की सच्चाई हमें नहीं बता पाई क्योंकि उसका कारण बताया है परमेश्वर कबीर देव जी ने, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। ये थोथा भूस छड़े थे, ये ऐसा प्रयत्न था इनका सदग्रंथों को समझा नहीं और व्यर्थ प्रयत्न कर और करवा रहे थे। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किस मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। आज तक ये वेदों को नहीं समझ सके, वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है, केवल एक ब्रह्म की पूजा, ब्रह्म के बाद फिर ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए जिसे पूर्ण मोक्ष होगा। अब देखिएगा यही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं सतयुग के ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी। ये 6ठा स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। हालिया और सतयुग के ब्राह्मण यानी मैं ऋषियों का क्या कह रहा है व्यास जी के, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण ये ऋषि महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान थे। और दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा ने कहा ओम की पूजा करो, सारी छोड़ दो, मेरी भी ना करो। भगवती के दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। ये मंदिरा के लठी नंगडवा रखे सतयुग ते लाग रहे प्रयत्नशील है, ये जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। अब यहां देखना, धर्म की यही सती थी त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी, हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब कलयुग आएगा तो कति उड़ा गया, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, तो जय गणेश देवा पागे अपना आत्माओं। अब आपको दिखाते हैं हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। परमात्मा परमेश्वर साकार है और मनुष्य सदृश है। हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ उसको साकार बताते हैं, मनुष्य सदृश बताते हैं। लेकिन अभी तक प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने सदग्रंथों से अपरिचित हैं। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल में आप किसी से भी ईसाई धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि परमात्मा की क्या सच्चाई है, वो साकार है या निराकार, वो तुरंत कहेगा कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आप मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा बेचून है, बेचून माने निराकार है। हिंदू धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है। और सिख धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है, अकाल पुरुष निराकार है। और जबकि सभी सदग्रंथ परमात्मा को साकार मनुष्य सदृश बताते हैं, उसका नाम कबीर बताते हैं, और जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ वो संत भी परमात्मा को साकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं और उनका नाम कबीर बताते हैं। अब पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। यह देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टाम्स एमए एमडीवी, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंग फील्ड मैसूरी यूएसए, प्रिंटेड इन इंडिया। यहां दिखाते हैं, ये हिंदी पढ़ेंगे इसको, ये वही का वही है। प्रबंध संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स एमए एमडीवी, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स पीएचडी, संपादक समिति, ये इतने कितने दुख, पीएचडी तो कम कोई नहीं। फुल लाइफ सैटरडे बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंग फाइल्ड मशहूरी, इतने यूएसए। अब इसके बिल्कुल प्रारंभ में उत्पत्ति ग्रंथ यानी जेनेसिस में देखते हैं, बिल्कुल प्रारंभ में ये देखिएगा, यहां से उत्पत्ति आरंभ, आरंभ होता है यहां से पवित्र बाइबल का। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेनेसिस, जेनेसिस चार पृष्ठ पर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन सांझ हुई फिर इसमें कुछ और रखा, तो परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरा दिन सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन हो गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। यहां आइएगा, हम छठवें दिन पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये कुछ रचना की, और इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। छठवां दिन यहां देखिएगा, इसके 26 नंबर श्लोक में अध्याय नंबर 1 के, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे चतुर श्याणा हो, समझदार हो, उनका कंट्रोलर बन सके। खाने के लिए नहीं कहा इसमें भगवान ने। तब परमेश्वर ने 27 नंबर श्लोक में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पुण्य आत्माओं, अब परमेश्वर कहा करते, मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी, मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। यानी सबके सदग्रंथों में खजाना भरा पड़ा है, ये जल में मीन पियासी, यानी वो प्यासे मर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। अब बता भगवान कैसा होगा, एक बालक ने पूछ लिया छठी कक्षा के, इसने पढ़ के बता देगा। परमात्मा भगवान परमेश्वर ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसे रूप का बनाऊंगा, और ऐसा ही कर दिया, नर नारी करके उसकी सृष्टि कर दी। बता फिर भगवान निराकार कित हो गया। अब कबीर परमेश्वर कहा करते, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। आगे देखो, परमेश्वर ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। हम ये पांच पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, पांच पृष्ठ, और जेनेसिस यानी उत्पत्ति, और 27वां हमने पढ़ लिया। अब देखो 28वां, अब कहते हैं फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा तुम फूलो फलो पर बढ़ जाओ, ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, मनुष्य के खाने के लिए क्या आदेश है परमेश्वर का। फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मांस खाने का आदेश परमात्मा का किसी को नहीं है, ये फाइनल फैसला है उस पूर्ण परमात्मा का जिसने सृष्टि रची। अब हम यहां ले गए, तो ये छठा दिन हो गया, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये छठवां दिन हो गया। अब सातवें दिन में क्या क्या, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा बैठे, यानी विश्राम किया। अब पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक ये स्पष्ट कर रखा है कि वह कबीर नाम का परमेश्वर है, और जिसको मुसलमान धर्म के अनुयायी जिसको अपना अल्लाह मानते हैं कि उस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, ज्ञान बताया। वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं इसको काफिर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, तू उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा इस कुरान की शरीफों की हिदायतों पर तू विश्वास रखना। और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। इसे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता से अन्य है कोई पूर्ण परमेश्वर जिसका उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को भी ज्ञान नहीं। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इस पे क्या लिखा है। यह है वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। समझ कर दिया कि इसमें जो लिखा है हमने इसको पूर्ण रूप से स्वीकारिए है। कौन? मुसलमान धर्म के श्रद्धालु बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे हैं। अब मुदरतम यानी बहर सह अनुवाद सटीपण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी शेरवानी संस्करण। ये तो अरबी भाषा है। जालिकल किताबू ला रैब जैसल की, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी कच्ची सत्य है कुरान शरीफ। मुतरजम बहरिस बरहसिया सानवाल स्टीफन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा सूरत फुरकानी, प्रश्न नंबर 604 पे है। सूरत फुरकानी कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25 नंबर। और हम नीचे आते हैं, ये है अरबी भाषा लिखी उर्दू में है, और इसका फिर अरबी भाषा का जैसे ये हिंदी में लिखा है ऐसा उर्दू में लिखी है। यहां देखिएगा इसके 52 नंबर आयत, ये कौन भी यहां समाप्त हुई। फला तुतियल काफिरिन वे जाहिदुम बिही जाहिदन कबीरन,